निशान। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, देख, मैं अपना दूत तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। यह जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसके मार्ग सीधे करो। यशायाह 40:3। जॉन बैप्टिस्ट ने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा की घोषणा करते हुए कहा, मेरे बाद वह आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, जिसकी सैंडल का पट्टा मैं नीचे झुकने और खोलने के योग्य नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु जॉर्डन में जॉन द्वारा बपतिस्मा लेने आए, और जब वह पानी से बाहर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान के प्रलोभन के बाद यीशु ने ईश्वर के संदेश का प्रचार करना शुरू किया और साबित किया कि वह ईश्वर है। यीशु सप्त के दिन कफरनहूम के आराधनालय में गया और उपदेश देने लगा। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें व्यवस्था के शिक्षकों के समान नहीं, परंतु अधिकार रखने वाले के समान शिक्षा देता था। तभी उनके आराधनालय में एक आदमी, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, चिल्लाकर बोला, हे यीशु नासरत, तुम हमसे क्या चाहते हो? क्या आप हमें बर्बाद करने आए हैं? मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र। चुप रहें, यीशु ने कठोरता से कहा। उससे बाहर आओ, दुष्ट आत्मा ने उस आदमी को जोर से हिलाया और चीखते हुए उसके पास से बाहर निकल गई। लोग इतने चकित हुए कि एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? एक नई शिक्षा और अधिकार के साथ। वह दुष्ट आत्माओं को भी आदेश देता है और वे उसका पालन करती हैं। उसके बारे में खबर तेजी से गलील के पूरे क्षेत्र में फैल गई। साइमन पीटर की सांस बुखार से पीड़ित थी और उन्होंने यीशु को उसके बारे में बताया, इसलिए वह उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाने में मदद की। उसका बुखार उतर गया और वह उनकी प्रतीक्षा करने लगी। लोग सभी बीमारों और दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को यीशु के पास लाए। सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया और यीशु ने बहुत से लोगों को चंगा किया जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे। उसने कई दुष्टात्माओं को भी निकाला, परंतु उसने दुष्टात्माओं को बोलने नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। कोढ़ से पीड़ित एक मनुष्य उसके पास आया और घुटनों के बल उससे विनती करने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। करुणा से भरकर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी को छुआ। उन्होंने कहा, मैं इच्छुक हूँ, साफ रहें। तुरंत ही उसका कोढ़ दूर हो गया और वह चंगा हो गया। यीशु ने फिर कफरनहूम में प्रवेश किया। इतने लोग इकट्ठे हो गए कि कोई जगह न बची, यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर भी नहीं, और उसने उन्हें वचन का उपदेश दिया। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को चार लोगों द्वारा उठाए हुए उसके पास लाए। चूंकि भीड़ के कारण वे उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके, इसलिए उन्होंने यीशु के ऊपर छत में एक खुला स्थान बनाया और उसमें से खोदकर उस चटाई को नीचे उतारा जिस पर लकवाग्रस्त व्यक्ति लेटा हुआ था। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब कुछ न्यायशास्त्री वहां बैठे हुए मन ही मन सोच रहे थे, यह आदमी ऐसी बात क्यों करता है? वह निंदा कर रहा है। केवल परमेश्वर के अलावा पापों को कौन क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में यही सोच रहे हैं, और उनसे कहा, तुम ये बातें क्यों सोच रहे हो? क्या आसान है लकवे के मारे हुए से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, अपनी चटाई उठाओ और घर जाओ। वह उठा, अपनी चटाई उठाई और उन सबके सामने बाहर चला गया। इससे हर कोई आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। संकलक की टिप्पणी, यीशु ने जो शब्द सिखाया वह शुभ समाचार था, पापों की क्षमा निकट है। इसलिए पश्चाताप करो और मसीहा के लिए तैयार हो जाओ। टिप्पणी समाप्त करें। यायरस नाम के आराधनालय के एक शासक ने अपनी मरती हुई बेटी को ठीक करने के लिए यीशु से बहुत विनती की। जब वे आराधनालय के हाकिम के घर पहुंचे तो यीशु ने देखा कि हंगामा हो रहा है और लोग जोर जोर से रो रहे हैं। वह अंदर गया और उनसे कहा, यह हंगामा और रोना पीटना क्यों है? बच्चा मरा नहीं है बल्कि सो रहा है, परंतु वे उस पर हंसे। उसने छोटी लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, छोटी लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई और इधर उधर चलने लगी। वह 12 वर्ष की थी। इस पर वे पूरी तरह से चकित रह गए। वह जहाँ भी जाता था एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, इसलिए वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। समय बीतता गया और वह एक सुदूर स्थान पर बिना किसी भोजन के देर से उगी। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम उन्हें कुछ खाने को दो। शिष्यों के पास समय नहीं था, पैसे भी कम थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि यीशु 5 रोटियां और 2 मछलियां ले सकते हैं और 5,000 को खिला सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर से एक और बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। चूंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे इन लोगों पर दया आती है, वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो वे रास्ते में ही गिर पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से कुछ बहुत दूर चलकर आए हैं। उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, परंतु इस सुदूर स्थान में कोई उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त रोटी कहाँ से पा सकता है? उनके पास कुछ छोटी मछलियाँ भी थीं। उसने उनके लिए भी धन्यवाद दिया और चेलों से कहा कि उन्हें बांट दो। लोगों ने खाया और तृप्त हुए। वे बैतसैदा में आए और कुछ लोग एक अंधे आदमी को लाए और यीशु से उसे छूने की विनती की। यीशु ने वैसा ही किया और उसकी दृष्टि बहाल हो गई और उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दिया। चमत्कारों का बिंदु। यीशु ने बहुतों को ठीक किया लेकिन सभी को नहीं। उनका उपचार कई गवाहों के साथ हुआ जो उनकी शक्ति और अधिकार से चकित थे। उनके द्वारा भीड़ को खाना खिलाने में केवल कुछ ही नहीं बल्कि हजारों लोग शामिल थे जो ठीक हो गए थे। उन्होंने इन चमत्कारों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनके नेताओं, फरीसियों, शास्त्रियों और शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया। ये नेता इस हद तक भी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे कि भगवान की शक्ति का श्रेय शैतान को दिया जाए। जनता के लिए यह स्पष्ट हो रहा था कि यीशु लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा थे। नेता अपनी परंपराओं में सहज थे और इन कुलीन रब्बियों के लिए मसीहा जीवन में इतनी निम्न स्थिति से नहीं आ सकता था यदि वह उनका राजा होता। स्वर्ग के राज्य। उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से सिखाया कि एक किसान अपना बीज बोने के लिए निकला। जब वह बीज बिखेर रहा था तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ चट्टानी स्थानों पर गिरे जहां अधिक मिट्टी नहीं थी। यह जल्दी उग आया क्योंकि मिट्टी उथली थी। परंतु जब सूर्य निकला तो पौधे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। अन्य बीज कांटों के बीच गिरे जिन्होंने बड़े होकर पौधों को दबा दिया जिससे उनमें अनाज नहीं आया। फिर भी अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वह उगी, बढ़ी और फसल पैदा की जो 30, 60 या यहां तक कि 100 गुना बढ़ गई। स्पष्टीकरण, किसान शब्द बोता है। कुछ लोग इसे सुनते हैं लेकिन शैतान आता है और तुरंत इसे ले जाता है। दूसरे लोग पहले तो इसे खुशी से ग्रहण करते हैं लेकिन चूंकि उनमें कोई जड़ नहीं होती इसलिए वे थोड़े समय के लिए ही टिकते हैं। और भी लोग वचन सुनते हैं परंतु इस जीवन की चिंताएं, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की अभिलाषाएं आकर वचन को दबा देती हैं और उसे निष्फल कर देती हैं। जबकि अन्य लोग वचन सुनते हैं, इसे स्वीकार करते हैं और 30, 60 या 100 गुना अधिक उत्पादन करते हैं। स्पष्टीकरण का अंत। एक आदमी जमीन पर बीज बिखेरता है। रात और दिन चाहे वह सोए या उठे, बीज अंकुरित होता है और बढ़ता है, हालांकि वह नहीं जानता कि कैसे। मिट्टी अपने आप अनाज पैदा करती है, पहले डंठल, फिर बाल, फिर सिर में पूरी गिरी। जैसे ही अनाज पक जाता है, वह उस पर हंसिया लगाता है, क्योंकि फसल आ गई है। यह भी सरसों के बीज की तरह है, जो सबसे छोटा बीज है जिसे आप जमीन में बोते हैं। फिर भी जब इसे लगाया जाता है तो यह बढ़ता है और बगीचे के सभी पौधों में सबसे बड़ा हो जाता है। इसकी शाखाएं इतनी बड़ी होती हैं कि आकाश के पक्षी इसकी छाया में बैठ सकते हैं। संकलक की टिप्पणी, बीज अच्छी खबर है कि यीशु का प्रायश्चित बलिदान और पुनरुत्थान प्रदान करेगा उन लोगों को पापों की क्षमा जो उनके संदेश को सुनने के इच्छुक हैं और मसीह की मृत्यु में दफन होने की उनकी शिक्षाओं का पालन करके उन पर भरोसा करते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। एक दुष्ट आत्मा वाला मनुष्य ब्रो से उससे मिलने आया। उसके हाथ पैरों को अक्सर जंजीरों से बांध दिया जाता था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया और उसके पैरों की बेड़ियां तोड़ दीं। जब उसने यीशु को देखा तो वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुम मुझसे क्या चाहते हो? भगवान की कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं सताओगे, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे दुष्टात्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। आपका क्या नाम है? सेना, उसने उत्तर दिया। उन्होंने यीशु से विनती की कि वह उन्हें सुअरों के झुंड के बीच भेज दे। परिणामस्वरूप सुअर तेजी से किनारे से झील में गिर गए और डूब गए। लोग यह देखने के लिए बाहर निकले कि क्या हुआ था। जब उन्होंने दुष्टात्मा से ग्रस्त मनुष्य को बैठे, कपड़े पहने हुए और सही दिमाग में देखा, वे डरते थे। जिन लोगों ने इसे देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति के साथ क्या हुआ था और सुअरों के बारे में भी बताया। जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था तो दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति ने उसके साथ चलने की विनती की। यीशु ने उसे अनुमति नहीं दी, परंतु कहा, अपने घर जाकर अपने परिवार के पास जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और उसने तुम पर कितनी दया की है। अत वह व्यक्ति चला गया और डेकापोलिस में बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना कुछ किया है, और सब लोग चकित हो गए। राज्य के बारे में दृष्टांतों का बिंदु। परमेश्वर ने अपने लोगों को मोसियाक वाचा के माध्यम से सिखाया कि वह एक नई वाचा के माध्यम से क्षमा लाएगा। यह नई वाचा उनके पुत्र नाजरेत के यीशु के माध्यम से आएगी। इसमें अन्य जातियों सहित सभी के लिए अनंत जीवन का वादा शामिल होगा जो आज्ञाकारिता के माध्यम से उस पर भरोसा करते हैं। अपने शिष्यों को समझाना और तैयार करना। उसने बारहों को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेज दिया और उन्हें दुष्टात्माओं पर अधिकार दिया। वे बाहर गए और प्रचार किया कि लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। संकलक की टिप्पणी, पश्चाताप का अर्थ है व्यक्ति के सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलना। टिप्पणी समाप्त करें। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होंगी और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों द्वारा उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए और उसे मार डाला जाना चाहिए और 3 दिन के बाद फिर से जीवित होना होगा। यदि कोई मेरे शिष्य की इच्छा रखता है तो उसे यीशु को प्रथम और स्वयं को अंतिम स्थान पर रखना होगा और उसका अनुसरण करना होगा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। किसी मनुष्य के लिए इससे क्या लाभ कि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले और फिर भी अपनी आत्मा का त्याग कर दे? अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? यदि कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मुझसे और मेरी बातों से लज्जित होगा, तो मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा तो उससे लज्जित होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो लोग यहाँ खड़े हैं वे परमेश्वर के राज्य को शक्ति के साथ आते हुए देखने से पहले मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया जहाँ वे बिल्कुल अकेले थे। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर किया गया। उसके कपड़े चमकदार सफ़ेद हो गए। दुनिया में किसी से भी ज्यादा सफ़ेद कपड़े उन्हें ब्लीच नहीं कर सकते। और एलियाह और मूसा, जो यीशु से बातें कर रहे थे, उनके सामने प्रकट हुए। एक बादल प्रकट हुआ और उन पर छा गया, और बादल में से यह आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम रखता हूँ, उसकी सुनो। अचानक जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्होंने यीशु को छोड़कर किसी को भी अपने साथ नहीं देखा। पद और पद के बारे में अपने शिष्यों के बीच एक विवाद को सुलझाने के लिए यीशु ने कहा, यदि कोई प्रथम बनना चाहता है तो उसे सबसे बाद में और सभी का सेवक बनना होगा। टिप्पणी: मसीह, उसके चर्च में वे सभी लोग सेवक हैं। कुछ फरीसियों ने आकर उसकी परीक्षा ली और पूछा, क्या किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना उचित है? मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मूसा ने एक आदमी को तलाक का प्रमाण पत्र लिखने और उसे विदा करने की अनुमति दी। यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारे हृदय कठोर थे इसलिए मूसा ने तुम्हारे लिए यह व्यवस्था लिखी, लेकिन सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने उन्हें नर और मादा बनाया, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे, तो वे अब दो नहीं बल्कि एक हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग न करे। जब वे फिर घर में थे तो चेलों ने यीशु से इस विषय में पूछा। उसने उत्तर दिया, जो कोई तलाक देता है, ग्रीक शब्द अपोलुओ को तलाक नहीं कहा जाता है, उसकी पत्नी और दूसरी महिला से शादी करती है और उसके खिलाफ व्यभिचार करती है, और यदि वह अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से ब्याह करती है तो वह व्यभिचार करती है। संकलक की टिप्पणी: एक पत्नी तब भी विवाहित होती है जब उसे तलाक के प्रमाण पत्र के बिना भेज दिया जाता है या दूर रख दिया जाता है। यह ग्रीक शब्द अपोलो का अर्थ है। यदि वह बिना प्रमाण पत्र के विवाह करती है तो वह उस पति के साथ अपनी विवाह संविदा तोड़ देती है जिसने उसे दूर भेज दिया था, क्योंकि उसे तलाक नहीं दिया गया है, अत वह व्यभिचारिणी है। एक प्रमाण पत्र के साथ पत्नी अब विवाहित नहीं है और इस प्रकार पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए वह व्यभिचारिणी नहीं है, क्योंकि विवाह अनुबंध को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि व्यवस्था विवरण 24 में दर्ज है, फरीसी इससे बहुत परिचित थे। टिप्पणी समाप्त करें। एक आदमी उसके पास दौड़ा और उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। अच्छे शिक्षक, उसने पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं लड़का था तभी से मैंने कानून का पालन किया है, उन्होंने कहा, आप में एक चीज की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेच दो और गरीबों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा, तो आओ मेरे पीछे आओ। इस पर उस आदमी का चेहरा उतर गया, वह उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। संकलक की टिप्पणी: यह व्यक्ति अपने स्वयं के धन पर भरोसा करता था और इस प्रकार भगवान के धन के बजाय जीवन के सुखों को त्यागने को तैयार नहीं था। टिप्पणी समाप्त करें। जेबेदी के पुत्र जेम्स और जॉन ने यह सोचकर कि यीशु एक सांसारिक राज्य की स्थापना करेंगे, कहा अपनी महिमा में हम में से एक को अपने दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर बैठने दो। यीशु ने उत्तर दिया कि यह उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन यदि वे राज्य में महान बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि जो लोग अन्य जातियों के शासक माने जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनके उच्च अधिकारी उन पर अधिकार जताते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, और जो कोई पहले होना चाहे वह सबका दास बने। मनुष्य का पुत्र भी इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब वे यरूशलेम के निकट आए और जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास आए, तो यीशु ने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और जैसे ही तुम उसमें प्रवेश करोगे तुम्हें एक बछड़ा बंधा हुआ मिलेगा, वहां जिस पर कभी किसी ने सवारी नहीं की, इसे खोलकर यहां ले आओ। तब यीशु ने अपने कपड़े उस पर डाल दिए और उस पर बैठ गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े सड़क पर फैला दिए, जबकि अन्य ने अपनी काटी हुई डालियां खेतों में फैला दीं। जो लोग आगे गए और जो पीछे आए उन्होंने होसन्ना चिल्लाया, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य धन्य है, ओसाना इन द हाईएस्ट। जब वह मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसके एक शिष्य ने उससे कहा, देखो गुरु कितने विशाल पत्थर हैं, क्या शानदार इमारतें हैं, क्या आप ये सभी महान इमारतें देखते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा, सभी को नीचे फेंक दिया जाएगा। जब यीशु मंदिर के सामने जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने एकांत में उससे पूछा, हमें बता ये बातें कब होंगी और इसका क्या चिन्ह होगा कि वे सब पूरे होने पर हैं? ध्यान रखें कि कोई आपको धोखा न दे। बहुत से लोग मेरे नाम से आकर यह दावा करेंगे कि मैं वही हूं और बहुतों को धोखा देंगे। जब तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहें सुनो तो घबराओ मत, ऐसी चीजें होनी ही चाहिए, लेकिन अंत अभी भी आना बाकी है। आपको सावधान रहना चाहिए, तुम्हें स्थानीय परिषदों को सौंप दिया जाएगा और आराधनालयों में कोड़े मारे जाएंगे। मेरे कारण तुम हाकिमों और राजाओं के सामने उनके गवाह ठहरोगे। मरकुस 13:1-9, परंतु वे कब घटित होंगे? जब आप घृणित वस्तु जो उजाड़ देती है को वहां खड़ा देखें जहां वह नहीं है। पाठक को समझने दें, तो जो यहूदिया में हैं उन्हें पहाड़ों पर भाग जाने दें। संकलक की टिप्पणी, शिष्यों को पता चल जाएगा कि यरूशलेम से प्रस्थान करने का समय आ गया है, क्योंकि मंदिर नष्ट होने वाला था। दानियेल 9:27 देखें। टिप्पणी समाप्त करें। परंतु उन दिनों में उस संकट के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा अपनी रोशनी न देगा, आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाशमंडल हिल उठेंगे। उस समय लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी शक्ति और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे, और वह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और अपने चुने हुओं को चारों दिशाओं से, पृथ्वी की छोर से लेकर आकाश की छोर तक इकट्ठा करेगा। अब अंजीर के पेड़ से यह शिक्षा सीखो, जैसे ही उसकी टहनियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। फिर भी जब आप इन चीजों को घटित होते देखते हैं तो आप जानते हैं कि यह निकट है, ठीक दरवाजे पर। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएं यह पीढ़ी निश्चय न मिटेगी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। सावधान रहें, सतर्क रहो, आप नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस आदमी के समान है जो जा रहा है। वह अपना घर छोड़ देता है और अपने सेवकों को उसका निर्धारित कार्य सौंप देता है और दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को जागते रहने के लिए कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब वापस आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्गे की बांग के समय या भोर को। यदि वह अचानक आ जाए तो उसे तुम्हें ढूंढने मत देना, सो रहा हूं। जो मैं तुमसे कहता हूं वही मैं हर किसी से कहता हूं, देखो। संकलक की टिप्पणी, यीशु ने खुशखबरी का प्रचार करने के लिए लोगों को चुना था कि मुक्ति और पाप की क्षमा पुरानी वाचा के तहत उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके प्रायश्चित बलिदान के बाद नई वाचा में उपलब्ध कराई जाएगी। उनका मानना था कि यीशु मसीहा थे जिन्हें एक सांसारिक राज्य की स्थापना करनी थी, जैसा कि उनके प्रिय राजा डेविड ने किया था। ईसा मसीह के पुरुत्थान, प्रकटन और उनके स्वर्ग में वापस आरोहण के बाद, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा, वे अंततः जब भी आवश्यक हुआ उनके लिए अपना जीवन देने को तैयार थे। उनकी गवाही और धर्मी जीवन उन सभी के लिए विश्वास करना, भरोसा करना और आज्ञा पालन करना संभव बनाते हैं जो गवाह नहीं थे। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, उपस्थित लोगों को बताया गया था कि कुछ लोग अपने पूजनीय मंदिर के विनाश को देखेंगे, लेकिन यीशु जो समाचार लेकर आए वह वादा किया गया शुभ समाचार, पापों की क्षमा और उनके प्रायश्चित बलिदान द्वारा मुक्ति थी। यह सदैव खड़ा रहेगा, लेकिन वह समय आ रहा है जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा और उन लोगों को इकट्ठा करेगा जिन्होंने विश्वास और उसके वचन का पालन करके मोक्ष को चुना था। टिप्पणी समाप्त करें। साजिश रचने वाले फरीसी। यीशु आराधनालय में गया और वहां एक सूखे हाथ वाला मनुष्य था। फरीसियों ने आपस में पूछा, क्या वह सप्त के दिन चंगा करेगा? अत यीशु ने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, सबके सामने खड़ा हो। तब यीशु ने उनसे पूछा, सप्त के दिन क्या उचित है, अच्छा करना या बुरा करना, प्राण बचाना या मार डालना? लेकिन वे चुप रहे। उसने क्रोध से चारों ओर उनकी ओर देखा और उनके हठीले हृदयों से अत्यंत व्यथित होकर उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने उसे बढ़ाया और उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। तब फरीसी बाहर गए और हेरोदियों के साथ षड्यंत्र रचने लगे कि वे यीशु को कैसे मार डालें। यीशु एक घर में दाखिल हुआ और फिर से उसे उपदेश सुनने या कोई चमत्कार करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। कानून के शिक्षक जो यरूशलेम से आए थे, उन्होंने कहा, उस पर बालजबूब ने कब्जा कर लिया है। राक्षसों के राजकुमार द्वारा वह राक्षसों को बाहर निकाल रहा है। यीशु ने पूछा, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ जाए तो वह घर खड़ा नहीं रह सकता। और यदि शैतान अपना विरोध करे और फूट डाले तो वह खड़ा नहीं रह सकता, उसका अंत आ गया है। दरअसल कोई भी किसी ताकतवर आदमी के घर में घुसकर उसकी संपत्ति तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस ताकतवर आदमी को बांध न दे, फिर वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्यों के सब पाप और निंदा क्षमा कर दी जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करेगा उसका अपराध कभी क्षमा न किया जाएगा, वह अनंत पाप का दोषी है। संकलक की टिप्पणी, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा पवित्र आत्मा के कार्य और शक्ति का श्रेय शैतान को देती प्रतीत होती है। टिप्पणी समाप्त करें। फरीसी और कुछ कानून के शिक्षक जो यरूशलेम से आए थे, यीशु के पास इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि उनके कुछ शिष्य अशुद्ध यानी गंदे हाथों से खाना खा रहे थे। फरीसियों और सभी यहूदियों ने तब तक खाना नहीं खाया जब तक कि वे अपने हाथ औपचारिक रूप से नहीं धो लेते, बड़ों की परंपरा का पालन करते हुए। उन्होंने पूछा, आपके शिष्य बड़ों के साथ खाना खाने के बजाय बड़ों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं रहते अशुद्ध हाथ? उसने उत्तर दिया, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में जो भविष्यद्वाणी की वह ठीक ही है, ये तो मनुष्यों द्वारा सिखाए गए नियम हैं। तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया है और मनुष्यों की परंपराओं को पकड़े हुए हो। और उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का एक अच्छा तरीका है, आपकी अपनी परंपराएं, यीशु समझाते हैं, मेरी बात सुनो और इसे समझो। मनुष्य के अंदर जाकर कोई भी बाहरी चीज उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। फरीसी आए और यीशु से प्रश्न करने लगे। उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उससे स्वर्ग से एक चिन्ह मांगा। उसने गहरी आह भरी और कहा, यह पीढ़ी चमत्कारी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका कोई चिन्ह न दिया जाएगा। संकलक की टिप्पणी, फरीसी इसलिए आए क्योंकि वे उनके कई चमत्कारों से अवगत थे। मृतकों को जीवित करना, हजारों लोगों को बहुत कम भोजन खिलाना और यहूदिया के कई क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को ठीक करना पर्याप्त नहीं था। वे स्वर्ग में ईश्वर से चमत्कार चाहते थे, न कि पृथ्वी पर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे उन्होंने ईश्वर के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया था। टिप्पणी समाप्त करें। यरूशलेम पहुंचने पर यीशु ने मंदिर क्षेत्र में प्रवेश किया और उन लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया जो वहां खरीद फरोख्त कर रहे थे। उसने सर्राफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की मेजें उलट दीं और किसी को भी मंदिर के दरबार में माल ले जाने की इजाजत नहीं दी। और उसने उन्हें सिखाते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुमने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। यह सुनकर प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने उसे मार डालने का उपाय ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वे उससे डरते थे और सारी भीड़ उसके उपदेश से चकित होती थी। वे यरूशलेम में फिर पहुंचे और जब यीशु मंदिर में घूम रहा था तो प्रधान याजक, शास्त्री और पुरनिये उसके पास आए। किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। और तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे उत्तर दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से कर रहा हूं। जॉन का बपतिस्मा, क्या यह स्वर्ग से था या मनुष्यों से? मुझे बताओ। उन्होंने आपस में चर्चा की और कहा, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह पूछेगा, तो फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? परंतु यदि हम कहें मनुष्यों से? वे लोगों से डरते थे क्योंकि सभी मानते थे कि यूहन्ना वास्तव में एक भविष्यवक्ता था। तो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें यह भी नहीं बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से कर रहा हूं। एक आदमी ने एक अंगूर का बाग लगाया। उसने उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी की, शराब के कुंड के लिए एक गड्ढा खोदा और एक गुम्मट बनवाया। फिर उसने अंगूर का बाग कुछ किसानों को किराए पर दे दिया और यात्रा पर चला गया। फसल के समय उसने एक नौकर को किसानों के पास भेजा कि वह उनसे अंगूर के बगीचे के कुछ फल ले आए। परंतु उन्होंने उसे पकड़ लिया, पीटा और खाली हाथ भेज दिया। तब उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने इस आदमी के सिर पर प्रहार किया और उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया। उसने एक और भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। उसने और भी बहुतों को भेजा, उनमें से कुछ को उन्होंने पीटा, कुछ को उन्होंने मार डाला। उसके पास भेजने के लिए एक बचा था, एक बेटा, जिससे वह प्यार करता था। उसने सब के बाद उसे यह कहकर भेजा, वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किराएदारों ने एक दूसरे से कहा, यही वारिस है, आओ हम उसे मार डालें और विरासत हमारी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। तब अंगूर के बगीचे का स्वामी क्या करेगा? वह आएगा और उन किराएदारों को मार डालेगा और अंगूर का बाग दूसरों को दे देगा। क्या तुमने यह पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वह आधारशिला बन गया, यहोवा ने यह किया है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का तरीका ढूंढा क्योंकि वे जानते थे कि उसने उनके खिलाफ यह दृष्टांत कहा था। बाद में उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा ताकि वे उसे अपनी बातों में फंसा सकें। वे उसके पास आए और बोले, गुरु, हम जानते हैं कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं। आप पुरुषों के बहकावे में नहीं आते, क्योंकि आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वे कौन हैं, परंतु तुम सत्य के अनुसार परमेश्वर का मार्ग सिखाते हो। सीजर को कर देना उचित है या नहीं? क्या हमें भुगतान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? परंतु यीशु उनके पाखंड को जानता था। तुम मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा। मेरे लिए एक दीनार लाओ और मुझे इसे देखने दो। वे सिक्का ले आए और उसने उनसे पूछा, यह किसका चित्र है और शिलालेख किसका? सीजर का, उन्होंने उत्तर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब सदूकी, जो कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं होता, उसके पास एक प्रश्न लेकर आए। गुरु, उन्होंने कहा, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई मर जाए और उसकी पत्नी छोड़ जाए और कोई संतान न हो तो उस व्यक्ति को विधवा से विवाह करना चाहिए और अपने भाई के लिए बच्चे पैदा करना चाहिए। अब सात भाई थे। पहले वाले ने विवाह किया और बिना कोई संतान छोड़े मर गया। दूसरे ने विधवा से विवाह किया परंतु वह भी बिना संतान मर गया। तीसरे के साथ भी ऐसा ही था। वास्तव में सातों में से किसी ने भी कोई संतान नहीं छोड़ी। आखिरकार महिला की भी मौत हो गई। पुनरुत्थान के समय वह किसकी पत्नी होगी? चूंकि सातों ने उससे विवाह किया था, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम गलती में नहीं हो? क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र या परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। जब मुर्दे जी उठेंगे तब न तो उनका ब्याह होगा और न ब्याह दिया जाएगा, वे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे। अब मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी के वृत्तांत में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। आप बुरी तरह गलत हैं। कानून के शिक्षकों में से एक आया और उन्हें बहस करते हुए सुना। यह देखकर कि यीशु ने उन्हें अच्छा उत्तर दिया था, उसने उससे पूछा, सभी आज्ञाओं में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु ने उत्तर दिया, यह है, सुनो हे इसराइल, प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु एक है। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो। अपनी पूरी ताकत से दूसरा यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इनसे बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है। सही कहा, गुरु, उस आदमी ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उसके अलावा कोई नहीं है। उसे अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी समझ से और अपनी पूरी ताकत से प्यार करो। तुम्हारे समान तुम्हारा पड़ोसी सभी होमबलियों और बलिदानों से अधिक महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने देखा कि उसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। और तब से किसी ने भी उससे कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। प्रायश्चित बलिदान। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जब वे फसह का मेमना बलि करके खा रहे थे, तब यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरा शरीर है। और उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके उन्हें दिया और सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लोहू है जो बहुतों के लिथे बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं दाख का रस उस दिन तक दोबारा न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। संकलक की टिप्पणी, यीशु का शरीर मानव शरीर में ईश्वर था जो पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित बलिदान बन जाएगा। जब वह पुनर्जीवित हुआ तो उसने भौतिक मनुष्य पर शैतान की पकड़ पर विजय प्राप्त कर ली। टिप्पणी समाप्त करें। वे जैतून के पहाड़ पर गए जहां यीशु ने कहा, तुम सब गिर पड़ोगे क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, परंतु जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, चाहे वे सब नष्ट हो जाएं, तो भी मैं नहीं गिरूंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, चाहे मुझे तुम्हारे साथ मरना भी पड़े, मैं तुमसे कभी इनकार नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद महायाजक की एक दासी आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर दृष्टि करके कहा, हे यीशु, तू भी उस नासरी के साथ था। लेकिन उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा, मैं न तो जानता हूँ और न ही समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। फिर पतरस ने यीशु को जानने से इनकार किया। तीसरी बार उसने खुद को श्राप दिया और उसने कसम खाई, मैं उस आदमी को नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तुरंत मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। तब पतरस को वह बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मुझसे इनकार करेगा, और वह फूट फूट कर रोने लगा। तब वे गेथसमेन नामक स्थान पर गए और उसने अपने चेलों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना करूं तब तक यहीं बैठे रहो। वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत उदास और व्याकुल होकर कहने लगा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। यहीं रहो और देखो। कुछ आगे जाकर वह भूमि पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मेरे ऊपर से टल जाए। और उसने कहा, अब्बा पिता, आपके लिए सब कुछ संभव है, इस प्याले को मेरे पास से हटाओ, फिर भी वह नहीं जो मैं चाहूंगा, परंतु जो तुम चाहोगे। अब समय आ गया है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया गया है। उठो चलो चलें, देख मेरा विश्वासघाती निकट आ पहुंचा है। संकलक की टिप्पणी, यीशु जिस प्याले को हटाना चाहते थे वह कोई बर्तन या उसकी सामग्री नहीं थी, बल्कि उनका लंबित सूली पर चढ़ना, पीड़ा का प्याला, आज्ञाकारिता के माध्यम से उन पर भरोसा करने वालों के लिए पापों की क्षमा, मोक्ष और शाश्वत जीवन लाने के लिए उनका प्रायश्चित बलिदान था। टिप्पणी समाप्त करें। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर चिन्ह दिया था कि जिसे मैं चूमूंगा वही पुरुष है, उसे पकड़ो और सुरक्षा के साथ ले जाओ। अत यहूदा तुरंत उसके पास गया और बोला, रब्बी, और उसने उसे चूमा। पहरेदारों ने उस पर हाथ डाला, उसे पकड़ लिया और यीशु को महायाजक के पास ले गए। सभी महायाजक और पुरनिये और शास्त्री इकट्ठे होकर यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध गवाही ढूंढने आए थे, परंतु उन्हें कोई गवाही न मिली, क्योंकि बहुतों ने उसके विरुद्ध झूठी गवाही दी, परंतु उनकी गवाही एक न हुई। इसलिए महायाजक ने उससे पूछा, क्या आप मसीह धन्य के पुत्र हैं? यीशु ने कहा, मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को शक्ति के दाहिने हाथ पर बैठे और स्वर्ग के बादलों के साथ आते देखोगे। हमें और किन गवाहों की जरूरत है? तुमने उसकी निंदा सुनी है। क्या है तुम्हारा फैसला? उन सभी ने उसे मृत्युदंड के योग्य बताकर उसकी निंदा की। जैसे ही सुबह हुई, महायाजकों ने बुजुर्गों, शास्त्रियों और पूरी महासभा से सलाह मशविरा किया और उन्होंने यीशु को बांधा और ले जाकर पीलातुस के हाथ सौंप दिया। पीलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। पीलातुस ने यीशु को मृत्यु का दोषी नहीं पाया और यह समझा कि महायाजकों ने ईर्ष्या के कारण ही उसे मांगकर पकड़वा दिया था। मैं यहूदियों के राजा के साथ क्या करूंगा? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और पीलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसलिए पीलातुस ने भीड़ को संतुष्ट करने की इच्छा से उनके लिए बरब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। सैनिक उसे महल अर्थात गवर्नर के मुख्यालय के अंदर ले गए और उन्होंने पूरी बटालियन को एक साथ बुलाया। उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसे पहनाया और वे उसे नमस्कार करने लगे। यहूदियों के राजा, नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे से वार कर रहे थे और उस पर थूक रहे थे और घुटने टेक कर उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। और जब उन्होंने उसका ठट्ठा किया तो उसका बैंजनी कपड़ा उतार लिया और उसी का कपड़ा उसे पहना दिया। वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए गोलगोथा, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान, में ले गए और क्रूस पर उसके खिलाफ यहूदियों के राजा का आरोप लगाया। जो लोग वहां से गुजरते थे वे उसका उपहास करते थे, सिर हिलाते थे और कहते थे, आहा, तू जो मंदिर को ढाएगा और तीन दिन में फिर बनाएगा, अपने आप को बचाकर क्रूस पर से उतर आ। और प्रधान याजक और शास्त्री आपस में यह कहकर उसका उपहास करते थे कि इसने औरों को बचाया, वह खुद को बचा नहीं सकता। इसराइल के राजा मसीह को अब क्रूस से उतरने दो ताकि हम देख सकें और विश्वास कर सकें। अरिंथिया का जोसेफ आया, जो परिषद का एक प्रमुख सदस्य था, जो स्वयं परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह हियाव बांधकर पिलातुस के सामने भीतर गया और यीशु की लोथ मांगी। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि क्या वह इस समय तक मर चुका था, और उसने सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि क्या वह पहले ही मर चुका है। सूबेदार से यह जानकर उसने शव यूसुफ को दे दिया। यूसुफ ने एक सनी का कपड़ा मोल लिया और उसे उतारकर उसमें लपेटा और चट्टान में खुदी हुई एक कब्र में लिटा दिया, और उसने कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। जब सप्त का दिन समाप्त हुआ तो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने मसाले मोल लिए कि वे यीशु के शरीर का अभिषेक करें। सप्ताह के पहले दिन सूर्योदय के तुरंत बाद वे कब्र की ओर जा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से पूछा, कब्र के द्वार से पत्थर कौन हटाएगा? परंतु जब उन्होंने ऊपर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह पत्थर, जो बहुत बड़ा था, लुढ़क गया है। जैसे ही वे कब्र में दाखिल हुए, उन्होंने दाहिनी ओर सफेद वस्त्र पहने एक युवक को बैठे देखा और वे घबरा गए। चिंतित मत होइए, उन्होंने कहा, आप यीशु नाजरीन की तलाश कर रहे हैं, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह उठा, वह यहां नहीं है। वह स्थान देखो जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु जाओ, उसके चेलों और पतरस से कहो, वह तुमसे आगे गलील को जाएगा। वहां तुम उसे देखोगे, जैसा उसने तुमसे कहा था। प्रायश्चित बलिदान का बिंदु। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से जो पुरानी वाचा दी, वह लोगों को क्षमा के लिए तैयार करने के लिए थी। हर साल यहूदी अपने पापों के लिए बलिदान के रूप में याजक के पास एक निर्दोष जानवर लाते थे। नई वाचा में यीशु ने पाप के दोषों के बिना एक बलिदान उन सभी को पाप की क्षमा और अनंत जीवन का अवसर प्रदान किया, जिन्होंने मसीह की शिक्षाओं को सुना, उनकी शिक्षाओं का पालन करके उस पर भरोसा किया और धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत किया। मार्क के मुख्य बिंदु। यीशु के चमत्कारों ने साबित कर दिया कि वह देवता थे, ईश्वर के पुत्र थे, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। ईश्वर का मुक्ति का संदेश मसीह है, उसकी मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, प्रायश्चित बलिदान। अपनी परंपरा में इतने डूबे हुए लोगों के लिए मसीह को स्वीकार करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।